दिन भर तारीख 5 नवंबर दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में पड़े लगभग 60% वोट।
विकास का ही मुद्दा लेकर के लोग वोट देने के लिए आए हैं। पिछले बार देने के बाद लोग धोखा खाए हैं, अब इस बार देखिए क्या होता है।
जिससे हमारा गद्दार है उसे कभी वोट नहीं देंगे।
आखिर किसका पलड़ा होगा भारी, ये तय 8 नवंबर को होगा। बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर 24 फिल्मकारों और लेखिका अरुंधति राय ने भी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की।
मैंने इसीलिए वापस किया क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सालों के बाद मुझे दिखाई दे रहे कि लेखक फिल्म मेकर जी, ये लोग जो मतलब ज्यादातर दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से, वो आ गए।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। बिहार में शाम 4 बजे तक लगभग 60% वोटिंग हुई। जिन 9 जिलों में वोट पड़े हैं उनमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार शामिल हैं। अंतिम चरण के इस मतदान में वो 6 सीटें भी शामिल हैं जिन पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने पश्चिम बंगाल से लगने वाले सीमांचल इलाके की उन 6 सीटों को चुना है जहाँ मुसलमान मतदाताओं की आबादी ज़्यादा है। भारत में कथित बढ़ती असहनशीलता और पुणे फिल्म संस्थान के हड़ताल कर रहे छात्रों के समर्थन में 24 और फिल्मकारों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए हैं। इससे पहले मशहूर बुद्धिजीवी अरुंधति राय ने भी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी। उधर कलाकारों की इस अवार्ड वापसी के जवाब में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। रूस और मिस्र ने कहा है कि इस ब्रितानी विचार को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि शनिवार को सिनाई क्षेत्र में हुए रूसी विमान हादसे का कारण बम विस्फोट था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने मिस्र के शर्म अल शेख तक जाने ब्रिटेन की उड़ानें रद्द करने के फैसले का बचाव किया। इसी रिसॉर्ट से रूसी विमान ने उड़ान भरी थी। प्रधानमंत्री कैमरन ने कहा कि वे अपने इस फैसले के बारे में मिस्र के राष्ट्रपति को बताएंगे, लेकिन मिस्र ने कहा कि उसे इस फैसले के बारे में पहले नहीं बताया गया। इस विमान हादसे में सभी 224 यात्री मारे गए थे। उधर रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश में रह रहे रूसी नागरिकों को आश्वासन देने की कोशिश की है। ब्रिटेन के मिस्र में शर्म अल शेख तक जाने वाली सारी उड़ानों को रद्द करने के बाद रूसी राष्ट्रपति ने मॉस्को में अपनी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो रूसी नागरिकों की हिफाजत के लिए जो भी मुमकिन होगा करेंगे। वो लोग जो किन्हीं कारणवश रूस से बाहर हैं, वे इस बात पर बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि हम हमेशा आपके हितों की हिफाजत करेंगे, खासतौर पर लीबिया, सीरिया और यमन में जहां हालात संकटपूर्ण हैं। ये थे राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के लाहौर में एकाएक गिरी फैक्ट्री की इमारत में 40 से 50 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे से सैकड़ों लोगों को निकालने वाले बचाव कर्मियों का कहना है कि अब मलबे से मदद की गुहार नहीं सुनाई दे रही है। दुर्घटना स्थल पर पुलिस और पीड़ितों के रिश्तेदारों के बीच झड़पें भी हुई। अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री के मालिक समेत 19 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर ने साउथ चाइना सी में अमरीकी विमानवाहक जहाज का दौरा किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार से करते हैं। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में प्रगति सक्सेना से सुना, आज पांचवें और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में लगभग 60% वोट पड़े और इस तरह से अगर सारे चरणों को जोड़ दिया जाए तो 56.80% मतदान हुआ। अब सभी की नजरें 8 तारीख पर जाकर गड़ गई हैं जब वोटिंग मशीन ये बताएंगी कि किसे कितने वोट मिले और कौन किस पर भारी पड़ा। 9 जिलों की 57 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। कटिहार, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और दरभंगा में जमकर वोट पड़े। उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा बोले,
पांचवें फेज में 9 जिले शामिल थे। कुल 38 जिले बिहार में है और आज के लिए 57 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। टोटल 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। आज के इस फेज में लगभग 6.6 करोड़ वोटर्स में से 1,55,00,000 वोटर उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। इस पूरे चुनाव में 3,450 कैंडिडेट्स ने भाग लिया, जिसमें 827 कैंडिडेट आज के फेज में थे। पूरे चुनाव में 272 महिला कैंडिडेट्स ने भाग लिया, जिसमें 58 आज के महिला कैंडिडेट्स थी।
उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा, अंतिम चरण में 6 मंत्रियों समेत कई महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। किशनगंज के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं के बीच जा पहुंचे हमारे सहयोगी नीरज सहाय।
आप अपना नाम बताइए।
परवीना बेगम।
क्यों वोट करने आए
हैं? स्कूल में बच्चे पढ़ाएंगे, गरीब आदमी को धंधा देना चाहिए, महंगा है सस्ता होना चाहिए।
मेरा नाम अंजरा नाम है। सरकार को जीतने के लिए, पब्लिक को बढ़िया से रहने के लिए, रोड बनाने के लिए, स्कूल बना के लिए,
पूरे देश का भलाई करे वो, उसी को वोट देना चाहिए। सरकार ऐसा होना चाहिए, हर मजदूर का साथ दे, सरकार ऐसा होना चाहिए, समझे? सरकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि लपाहिस को लात मार दे और करोड़पति को सर पे बैठा ले।
आप अपना नाम बताइए।
शिखा देवी।
यहाँ वोट देने आई हैं, कौन सा मुद्दा आपके लिए लगता है कि कुछ
मत? यहाँ पे बगल में नदी है, उसके लिए पंडाल बन जाए, वो सड़क हम लोग का कच्ची सड़क है, वो सड़क को पक्की कर दे। हम लोग को कोई ना कॉलोनी नहीं मिला है उसके लिए, के विकास के लिए।
यहाँ इस इलाके से ओवैसी साहब की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जानती हैं आप उनके पार्टी?
जी नहीं।
कौन सा मुद्दा सोच कर आई है कि आपको लगता है?
हम यही मुद्दा सोच कर आए हैं कि हम लोग का बगल में नदी है, उसका बंडाल बन जाए, सड़क है उस बन जाए। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग का कॉलोनी भी नहीं, हम लोग बीपीएल भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को, उसी के मुद्दा से आए हैं, अगर मिल जाए तो अच्छा है।
मोहम्मद नसीम अहमद।
इलाके में कौन सा मुद्दा हावी है?
विकास का ही मुद्दा लेकर के लोग वोट देने के लिए आए हैं। पिछले बार देने के बाद लोग धोखा खाए हैं, अब इस बार देखिए क्या होता है।
ओवैसी साहब की पार्टी भी लड़ रही है, उनका कुछ असर?
देखिए हर पार्टी लड़ रही है, जो जिस पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है वो अपना तो असर बताएगा ही, लेकिन ये तो मतलब फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कामयाब होती है।
मंजरी मामला हुआ मेरा, विकास का ही मुद्दा है मेन, विकास का कमी है, विकास होनी चाहिए।
इस बार ओवैसी साहब की पार्टी भी यहाँ लड़ रही है, क्या कोई असर फर्क
पड़ेगा कि एक नई पार्टी है, उसको भी आदमी देखना चाह रहा है कि जैसे ये हैदराबाद से आई हुई है, इसको ये देख करके कि ये किस तरह का काम, किस तरह का प्रभाव, कैसा आदमी है। अगर वो कल के डेट में, आज तो वो 6 सीट से लड़ रहे हैं, कल एक दो सीट होगा तो बढ़ा भी सकता है, उसके बाद मुख्यमंत्री का दावेदारी भी कर सकता है। नई पार्टी है, नई पार्टी सोच के भी कुछ आदमी वोट दे रहा है।
ये मुद्दा है कि हम लोगों का बिहार किस तरीके से बचे, जो भावनाएं चल रहा है इस बार, इस भावना से हम लोगों को बिहार बचाना है। और नीतीश कुमार जी ने हम लोगों का काम भी विकास का अच्छा करता है। थोड़ा कमो बेस, अगर 5 बेटा है तो सबका हिस्सा पूरा नहीं कर सकिएगा। मेन मुद्दा है यही कि हम लोगों का बिहार को बचना चाहिए, बिहार का काम होना चाहिए, और हम लोगों का विकास के लिए नीतीश जी ठीक कर रहा है।
वोट देने क्यों आए हैं? हर साल देने वोट आते हैं, इस साल भी आए हैं, इस साल अच्छे से वोट देंगे। जो हम लोग चुने हैं, जिसको हम चुने हैं उसी को वोट देंगे, इसलिए कि हमारा जिसमें भलाई है उन्हीं को वोट देंगे, जिससे हमारा गद्दार है उसे कभी वोट नहीं देंगे।
बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे वादे, सब कुछ वोटिंग मशीन में कैद। जनता की आवाज आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं अपने सहयोगी पंकज प्रदर्शी को, जो कि बिहार चुनावों से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय वापस दिन भर का हाल लेकर पटना वापस पहुंच चुके हैं। पंकज, क्या खास रहा, आंखों देखा बयां करें।
देखिए मोहनलाल जी, मैं आज सीमांचल के इलाके में था, किशनगंज अररिया क्षेत्र में था, और वहां शुरू में तो मैंने देखा, महसूस भी किया कि लोगों की तादाद कम हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा बहुत बड़ी तादाद में लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे, और इसका आप इसका आकलन इसी से लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है इस चरण में। और लोगों में बहुत उत्साह था, और सीमांचल इलाके में जिस तरह एक त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, और कोसी क्षेत्र की अगर बात करें तो पप्पू यादव की भी एक पार्टी है, एनसीपी भी तारिक अनवर की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कटिहार के क्षेत्र में आ गए हैं। तो इस बार जो सीमांचल कोसी बेल्ट में जो चुनाव हो रहे थे वो मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा था, जिससे पहले जहां महागठबंधन और एनडीए का आमने सामने मुकाबला था, यहां पे थोड़ी रोचक स्थिति ये है कि एक तीसरी पार्टी भी उभर के आई है, जिसने इन दोनों गठबंधनों की नींद थोड़ी बहुत हराम करके रखी हुई है। अब तो वो इसका पता चलेगा बाद में जब नतीजे आएंगे, लेकिन बड़ी रोचक स्थिति है। ओवैसी की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, जबकि सब जानते हैं सीमांचल का नाम आते ही सबसे पहले जिक्र हो रहा है ओवैसी की पार्टी का, लेकिन क्या ओवैसी की पार्टी इतना इंपैक्ट ला पाएगी, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। और सच पूछिए तो बहुत मुश्किल है इसका जवाब
अभी दे पाना। बिल्कुल, लेकिन पंकज आपने पिछले चुनावों को भी देखा और इस पूरे चुनाव में लंबे समय तक आप वहां पर इलाके में घूमते रहे, अलग अलग जगह से आपने रिपोर्टिंग की, लोगों से बात की, उनकी आवाज सुनी, कुल मिलाकर अगर ओवरऑल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले चुनावों की तुलना में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चुनाव।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले चुनाव में आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ थी, मिलकर चुनाव लड़ रही थी ये दोनों पार्टियां। इस बार दोनों अलग हैं, तो जो चुनाव का डायनेमिक्स उस समय था वो पूरी टोटली बदल चुका है। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस बार जाति पर आधारित वोटिंग देखने को मिली और खुल के देखने को मिली है। भागवत के बयान पे लालू यादव ने जिस तरह उसको भुनाया है उसका असर देखने को मिल रहा है। फिर मुस्लिम और यादव का समीकरण भी एकजुट होता दिख रहा है, जो शायद पिछले चुनाव में नहीं था। तो लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ आने से बिहार की स्थिति बहुत रोचक हुई है, जो शायद पहले चुनाव में इतनी नहीं थी। और ये आपको देखने से पता चला कि जो हम टेलीविजन चैनल पे देख भी रहे हैं कि पहली बार एग्जिट पोल में भी कांटे की टक्कर है, यानी एग्जिट पोल भी खुल के ये नहीं बता पा रहे कि किस गठबंधन को बढ़त मिली। तो इस बार कोई भी राजनीतिक टीकाकार ये कहने से बच रहा है कि कौन सा गठबंधन जीतेगा। शायद यही इस बार बिहार के चुनाव की सबसे बड़ी बात है और यही जनता को सबसे ऊपर बनाती है लोकतंत्र।
जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज प्रदर्शी सीधे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बिहार से जुड़ी जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
बिहार का नतीजा 8 नवंबर को आएगा। राज्य में महागठबंधन या एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव पर भी डालेंगे प्रभाव। तो बिहार चुनाव का देश की राजनीति पर कितना होगा असर? किसका विकास मॉडल चलेगा, बिहार का या गुजरात का? इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस। बहस में शामिल होने के लिए डायल करें 1800 11 और अपने सवाल आप हमें bbchindi.indiabol@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। असहिष्णुता के मुद्दे पर साहित्यकारों और रचनाकारों का सम्मान लौटाने का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है। आज पुणे फिल्म संस्थान के हड़ताल कर रहे छात्रों के समर्थन में 24 और फिल्मकारों ने अपना पुरस्कार लौटा दिया। लौटाने वाले फिल्मकारों में मशहूर फिल्म निर्देशक और निर्माता कुंदन शाह, सईद मिर्जा, संजय काक, प्रदीप किशन, तपस बोस, अनवर जमाल, मधुश्री दत्ता, अमिताभ चक्रवर्ती के नाम शामिल हैं। सुबह ही प्रसिद्ध लेखिका मशहूर बुद्धिजीवी अरुंधति राय ने भी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी। अरुंधति राय को 1989 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म का नाम था इन विच एनी गिव्स इट टू दोज वंस। क्यों और कैसे, तमाम सवालों के साथ अरुंधति राय से मिलने जा पहुंचे हमारे सहयोगी राजेश जोशी।
अरुंधति राय, आपने एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा है आज, उसमें कहा है कि ये पुरस्कार जो आपको मिला था स्क्रिप्ट लिखने के लिए, बेस्ट स्क्रिप्ट का, वो आप वापस कर रही हैं, लेकिन आप जो चल रहा है आसपास उससे बहुत ज़्यादा उद्वेलित नहीं हैं, बहुत शॉक्ड नहीं हैं। थोड़ा सा और इस पर रोशनी डालिए, क्यों आपको इतना वक्त लगा कि आपने अपना पुरस्कार वापस करने का फ़ैसला किया?
मैंने इसीलिए वापस किया क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत सालों के बाद मुझे दिखाई दे रहे कि लेखक, फिल्म मेकर्स, ये लोग जो मतलब ज़्यादातर दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से, वो आ गए। हम जैसे लोग तो पहले से बहुत से लिख चुके हैं, सबको मालूम है कि अरुंधति रॉय ने क्या लिखा है, क्या सोचती है, सबको मालूम है। और ये भी एक वजह था कि 2005 में जब कांग्रेस का राज था तब मैंने साहित्य अकादमी अवार्ड लेने के लिए इनकार किया, तो लोग वो लेके दूसरे लेखकों को दोष दे रहे थे कि देखो इन्होंने तो लिया ही नहीं अवार्ड, अच्छी बात है आप लोगों ने लिया और फिर वापस करें। लेकिन मैं उनके साथ एक सॉलिडारिटी दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने पर्पसली, एक्चुअली आई वाज वेरी हैप्पी कि इतने लोगों ने किया और बाद में मैंने किया, मैंने पहले नहीं किया, इसीलिए क्योंकि बहुत बार सबसे पहले मैं करती हूँ।
एक डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक देश में एक आदमी के नाम पे 336 सीटें जिता के इस देश की जनता भेजती है, अगर आप जनतांत्रिक हैं, डेमोक्रेट हैं, तो उस बात को तस्लीम आप करेंगी, उसको आप उसका आप एहतराम करेंगी, उसको आप मानेंगी।
बिल्कुल।
336 सीटें जिस आदमी को दी हैं उसके खिलाफ अगर 50 राइटर्स या कुछ कलाकार अपने पुरस्कार वापस दे रहे हैं, तो क्या ये बैलेंस आप माइनॉरिटी में नहीं है?
देखिए, लेखक लोगों का ये काम नहीं है कि मेजॉरिटी में रहना है, हमारा काम ये नहीं है। अगर मैं अकेली हूँ तब भी मैं जो सोचती हूँ मुझे लिखना चाहिए, जब सब मेरे खिलाफ़ होंगे तब भी हमारा काम, क्योंकि हम लोग नेता लोग नहीं है ना, मैं नेता नहीं हूँ और जो मैं सोचती हूँ वो ही करूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे वोट दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खड़े होकर ताली मारो, नहीं कह रही हूँ ना, मैं जो लिख रही हूँ मैं लिख रही हूँ।
लेकिन ये जो पुरस्कार वापस किया गया है, उदय प्रकाश ने अब से एक महीना या उससे पहले पुरस्कार वापस किया था और एक लेखक की आवाज़ थी उस वक्त, सबकी जो अंतरात्मा है वो नहीं जगी थी, एक के बाद एक ये कॉपीकैट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उदय प्रकाश ने वापस किया है तो मैं भी वापस करूंगा, और जितने लोग वापस कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर पहले से ही आरएसएस और बीजेपी की राजनीति के, नरेंद्र मोदी की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, तो उनका स्टैंड तो पहले से ही साफ था, उसमें नया क्या है?
मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कॉपीकैट जो कहते हैं, मैं भी कॉपीकैट ही हूँ और इसीलिए मैंने किया क्योंकि मैं बनना चाहती थी कॉपीकैट, क्योंकि शायद इतिहास में ऐसा कुछ हुआ नहीं है पहले। जो भी है, अगर वो मतलब बीजेपी या आरएसएस के खिलाफ होना कोई ख़राब बात नहीं है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि कांग्रेस एक्चुअली बीजेपी के खिलाफ है, वो भी जो रात को करते हैं ये लोग दिन को करते हैं, तो इस फॉर्मेट में लोगों को आप बांध नहीं सकते हैं। और अगर मान लो कि कोई आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, जैसे मैं हूँ, और मैंने 20 साल से खिलाफ है, अभी भी खिलाफ हूँ, और मुझे एक मौका मिला उसको दिखाने के लिए या दूसरे लोगों के साथ मिलके कुछ करने के लिए, मैं करूँगी ना।
इस मौजूदा राजनीति की जो बात हो रही है, आरएसएस के लोग जो हैं या बीजेपी नरेंद्र मोदी के पक्षधर जो हैं वो कहते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा हिंदुस्तान में, दलितों को जलाया जाता है, मारा जाता है, 84 के दंगे हुए, उस वक्त आप लोग कहाँ थे, ये बार बार चीज़ उनकी तरफ से आती है। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था खुशवंत सिंह ने अपना पुरस्कार वापस किया था, लेकिन वो बाकी लोगों ने उसको समर्थन नहीं किया, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या परिस्थितियाँ बदली हैं, तब क्यों नहीं लेखकों की अंतरात्मा जगी?
मतलब ये लोग जो पहले से पॉलिटिकल एरिना में नहीं थे वो खुद अपना जवाब ज़रूर देंगे। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जब से मैंने लिखने कोशिश शुरू किया है तब से कांग्रेस के खिलाफ बहुत लिख चुकी हूँ, बहुत सारा लिख चुकी हूँ, तो मुझे आई मीन अगेन आई एम सेइंग कि ये कांग्रेस बीजेपी वाला डिबेट में मुझे आप नहीं घसीट सकते हैं, क्योंकि 2005 में जब कांग्रेस ने मुझे पुरस्कार दिया मैंने कहा मैं आप लोगों के खिलाफ लिखती हूँ, क्यों दे रहे हो मुझे पुरस्कार, मतलब मुझे चुप कराने के लिए कि क्यों दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने वापस कर दिया था।
अरुंधति के जवाब बाकी हैं और राजेश जोशी के सवाल भी बाकी हैं। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में हम और सवाल पूछेंगे आपको, उस हिस्से को भी सुनवाएंगे। मणिपुर में गाय चोरी के आरोप में एक मदरसा शिक्षक की हत्या से वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। दरअसल ये घटना सोमवार की है जब राजधानी इम्फाल में एक गांव में कुछ लोगों ने गाय चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए एक व्यक्ति को घर से जबरन उठा लिया। बाद में एक भीड़ ने कथित तौर पर उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार ने मामले की रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज कराई है और पुलिस ने गाय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
विरोध कर रहे संगठन ने दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाते हुए बृहस्पतिवार को पूरे मणिपुर में बंद बुलाया था। हालांकि इम्फाल इस जिले के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में बंद का असर काफी कम देखने को मिला। इस बीच स्थानीय थाने का घेराव करने गए प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी जिसमें करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। गाय चोरी की इस घटना की जांच को लेकर पुलिस पर लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए इरिलबुंग थाने के प्रभारी शरद सिंह ने कहा,
हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो एक आदमी को पकड़ता है, उसको इंटरोगेशन चल रहा है, कुछ का स्टेटमेंट है, कोई कोई विलेज लोकत कोई कोई नाम निकलता है।
अच्छा।
करने का कोशिश, बहुत कोशिश किया है, रेप किया है कमांडो के साथ।
अच्छा।
अभी वो लोग एक्सपोंडिंग है, हम लोग कहाँ है इंफॉर्मेशन कले इंटेलिजेंस कलेक्ट किया है।
ये घटना मणिपुर के इम्फाल जिले में पिछले सोमवार को उचेकोन लाई मोरिबा गांव में घटी, जहां के कुछ ग्रामीणों ने कथित तौर पर गाय चोरी का इल्जाम लगाते हुए पड़ोसी केराव मकटिंग गांव के 55 वर्षीय मोहम्मद हसमत अली उर्फ बाबू को जबरन घर से उठा लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। मोहम्मद हसमत अली स्थानीय मदरसे में शिक्षक थे। जिस व्यक्ति के घर से गाय का बछड़ा लापता हुआ था उसकी शिनाख्त खुमल्लम बाम ब्रजन के रूप में की गई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन विरोध कर रहे संगठन शिक्षक की हत्या को दादरी कांड जैसी घटना बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि एक ईमानदार शिक्षक की हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार और पुलिस इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई तत्परता नहीं दिखा रही। अब वे इस मामले में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से नाराज ज्वाइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट अलीज किलिंग के संयोजक मोहम्मद रजाउद्दीन ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
एक ईमानदार हेडमास्टर का अपनी जान एक बस पॉलिटिकल इशू बनाने की वजह से इस मुद्दे पे डाला गया है, तो अभी लोग बहुत गुस्से में है। अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं किया है और अभी तक जितने भी कातिल है उनको नहीं पकड़ा, उसकी पुलिस थाने के ऊपर पूरा आदमी भरा हुआ है और हमारा कातिल को पकड़ नहीं सकने तो जब ये तोड़ देंगे बोल के भरा हुआ है।
एक तरफ देश में कथित बढ़ती असहनशीलता के माहौल को लेकर लेखक, साहित्यकार, फिल्मकार और वैज्ञानिक अपने अवार्ड लौटाने की घोषणा कर रहे हैं, वहीं ऐसी घटनाओं के सामने आने से लोगों में चिंता का माहौल बढ़ने लगा है। मैं दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी हिंदी के लिए गुवाहाटी से।
रुख अंतर्राष्ट्रीय खबर का करते हैं। म्यांमार में विपक्ष की नेता आंग सान सू ची ने कहा है कि अगर रविवार को उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी चुनाव जीतती है तो उनकी भूमिका राष्ट्रपति से भी बढ़कर होगी और वो संभावित सत्ताधारी पार्टी का नेतृत्व करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में NLD बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन सेना की ओर से जो संविधान बनाया गया है उसमें सू ची राष्ट्रपति नहीं बन सकती है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रगति सक्सेना से।
म्यांमार की राजधानी रंगून में मौजूद बीबीसी संवाददाता जॉना फिशर का कहना है कि सू ची ने इस बार मजबूती के साथ सरकार का नेतृत्व करने की दावेदारी जताई है। रविवार को होने वाले चुनावों से पहले अपने आखिरी संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए सू ची ने कहा है अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वे सरकार का नेतृत्व करेंगी और अपनी पार्टी की नीतियों के मुताबिक काम करेंगी। आंग सू ची कह रही हैं, मैंने ये नहीं कहा है कि हम जीत रहे हैं, मैंने कहा है कि अगर हम जीतते हैं और NLD सरकार बनाती है तो मेरी भूमिका राष्ट्रपति से ऊपर होगी। ये एक सीधा सा संदेश है। हालांकि म्यांमार के संविधान का अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति देश में सभी लोगों से ऊपर होता है। सेना की ओर से बनाए गए संविधान के मुताबिक सू ची खुद से इसलिए राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं क्योंकि उनके बेटे के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। लेकिन सू ची ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोकता हो। म्यांमार में पिछले 25 सालों में पहली बार स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं। 2011 में सैन्य सरकार के हाथों से सत्ता नागरिक सरकार के हाथ में आई थी। इसके बाद से पहली बार होने जा रहे इन राष्ट्रीय चुनावों में 90 से भी अधिक पार्टियां भाग ले रही हैं। सू ची ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि 2010 के बाद से देश में केवल सतही बदलाव हुए हैं। सू ची कह रही हैं, 2010 के बाद से चुनावों में कुछ भी नहीं बदला है। असल लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जो नहीं बदली हैं, सिर्फ दिखावटी बदलाव हुए हैं। मैं विदेशी प्रतिनिधि मंडलों से भी लगातार पूछती रहती हूं, जो कि कहते रहे हैं कि यहां जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूं कि बताएं असल में यहां क्या बदलाव हुआ है। मुझे एक बार एक प्रतिनिधि मंडल ने ये जवाब दिया कि सड़कों पर काफी ज्यादा टोयोटा कार दिखाई देने लगी है। मैंने कहा कि ये टोयोटा कंपनी के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। हम सतही बदलावों को बदलाव नहीं कह सकते, हमें उन बदलावों की जरूरत है जिससे हमारी जनता को फायदा पहुंचे। सू ची ने चुनावी प्रक्रिया की भी आलोचना की और कहा है कि पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर चुनावों में हो रही अनियमितताओं से निपटने में नाकाम रहने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में संक्षिप्त रूप से रोहिंग्या मुसलमानों के प्रश्न को भी छुआ। रोहिंग्या मुसलमानों के सवाल पर साफ तौर से नहीं बोलने के लिए सू ची की लगातार आलोचना होती रही है। म्यांमार के संविधान के मुताबिक संसद की कम से कम 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। सरकार बनाने के लिए इसके अलावा बची हुई सीटों में से NLD और उसके सहयोगी दलों को कुल सीटों का कम से कम 2/3 बहुमत जुटाना होगा।
और कार्यक्रम में इस रिपोर्ट के बाद आपकी चिट्ठियों की बारी।
नमस्कार श्रोताओं, आज आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं संदीप सोनी और मेरे साथ हैं राजेश प्रियदर्शी।
नमस्कार
राजेश जी। बिहार विधानसभा चुनाव पर बीबीसी की खबरों और पंकज प्रियदर्शी की रिपोर्टिंग के बारे में हमें कई पत्र मिल रहे हैं। कुछ पत्र तारीफ से भरे हैं और कुछ शिकायतों से। शुरुआत शिकायती पत्रों से करते हैं। शब्बीर खन्ना रियाद सऊदी अरब से लिखते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि बीबीसी बिहार चुनाव में बीजेपी का एक तरह से अंदरूनी समर्थन कर रही है। मुसलमान मतदाताओं के रुख पर पंकज प्रियदर्शी की रिपोर्ट से ऐसा ही प्रतीत होता है। इसी तरह गया से सौरभ कुमार लिखते हैं कि बीबीसी संवाददाता ने नीतीश सरकार की बहुचर्चित साइकिल परियोजना की जमकर तारीफ की, लेकिन उनकी नीतियों ने शिक्षा व्यवस्था की जो दुर्गति की है उसका कहीं आपने जिक्र नहीं किया।
दो बातें, मैंने दोनों रिपोर्ट्स सुनी हैं इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। पहली तो ये कि हम जब कहीं फील्ड में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हर तरह की आवाज़ें और हर तरह के मुद्दे आप तक ला सकें, आपको सुनवा सकें। पहली बात ये कि जो रिपोर्ट पंकज प्रियदर्शी ने आप तक पहुंचाई, उसमें ये ज़रूर है कि बिहार के मुसलमान जो कुछ कह रहे हैं वो उसको आपने उन्हीं की आवाज़ में सुना, ये उनकी राय है, उससे हम छेड़छाड़ या उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो साइकिल वाली रिपोर्ट थी वो केंद्रित ही सिर्फ इस बात पर थी कि साइकिल की जो योजना है नीतीश की, उसका क्या असर देखने को मिल रहा है, और जो पंकज प्रियदर्शी को दिखाई दिया वो उन्होंने आपको दिखाया, लेकिन आपको हमारी कवरेज को उसकी संपूर्णता में, उसकी टोटैलिटी में देखना चाहिए। हमने हर तरह की रिपोर्टिंग की है जिसमें नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना भी हुई है, बिहार में जो अब तक काम हुआ है उसकी हमने एक तरह से निष्पक्ष ढंग से समीक्षा करने की कोशिश की है अपनी तरफ से, और हम एक ही चीज़ है जिसके लिए हम अपने कवरेज में सबसे ज़्यादा सतर्क होते हैं, वो हमारी निष्पक्षता और संतुलित होना है। लेकिन हर रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारी बातें और सारे पक्ष हों, क्योंकि वो कई बार रिपोर्ट के विषय ऐसे होते हैं कि वो संभव नहीं होता। लेकिन हमारा जो पूरा कवरेज देखेंगे तो हमने उसमें एक्सप्लेनर्स ज़्यादा किए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की है कि मुद्दे क्या हैं और कौन क्या कह रहा है, और बिहार की जनता को आखिरकार 8 तारीख को तय करना है कि क्या उसकी पसंद है।
और राजेश जी, अगले पत्रों में शिकायतों के साथ गुस्सा भी भरपूर है। प्रदीप सिंह फैजाबाद से, जीशान नैयर बेगूसराय से और एहसान असगर बुलढाणा महाराष्ट्र से लिखते हैं कि पिछले 10 दिन से नमस्कार भारत, विश्व भारती दिनभर और घटना चक्र, कोई भी रेडियो कार्यक्रम हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने श्रोताओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
सबसे पहले तो बिना किसी लाग लपेट के हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तकनीकी समस्या है जिसका समाधान जल्द से जल्द हो जाए। साथ ही ये कि जब तक आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, अनुरोध यही है कि हमारी वेबसाइट पर उसको आप 24 घंटे के भीतर, जब आपको सुविधा हो, आप सुन सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही ये समस्या सुलझा लेंगे।
और राजेश जी, इसके अलावा हर बार की तरह विवेचना के बारे में, ख़ास तौर पर सेम पित्रोदा पर रेहान फजल की विवेचना और बीबीसी इंडिया बोल, जिसमें बिहार से पंकज प्रियदर्शी सीधे शामिल हुए थे, इस कार्यक्रम के बारे में काफ़ी तारीफ की चिट्ठियां हमें मिली हैं।
श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, और जो शिकायत करते हैं उनका भी शुक्रिया। पत्र हमें लिखते रहिएगा। पत्र लिखने के लिए आप जानते ही हमारा पता है, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। तो आपकी राय में आज इतना ही। संदीप सोनी को और मुझे राजेश प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
और अब कार्यक्रम में से पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव में लगभग 60वीं सदी वोटिंग हुई है। भारत में कथित बढ़ती असहनशीलता और पुणे फिल्म संस्थान के हड़ताल कर रहे छात्रों के समर्थन में 24 और फिल्मकारों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मोहाली में हो रहे टेस्ट मैच में भारत की टीम 201 रन पर आउट हो गई है। रूस और मिस्र ने कहा है कि इस ब्रितानी विचार को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सिनाई क्षेत्र में हुए रूसी विमान हादसे का कारण बम विस्फोट था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, साढ़े 9 बजे घटना चक्र लेकर एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।